परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
भजने आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको, भजने आए आत्म सच्चाई से तुझको, झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम, भजने 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 आए हैं पिताजी आत्म सच्चाई से तुझको।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन मित्रों का भी जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम को सुनने के द्वारा अपने जीवन की उन आशीषों को पत्र के माध्यम से और फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से आप कार्यक्रम सुने, दूसरों को भी बताएं और अपने जीवन की आशीषों को हम तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कह सकें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 26 से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में अब तक आपने बहुत सारी आशीषों को दिया है। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। विशेष करके हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, तनाव में हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप उनकी सहायता करें ताकि वे आपके वचन पर भरोसा रखने पाएं, आपकी ओर देखने पाएं, आपकी ओर से उस सहायता को प्राप्त कर सकें। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं, हमारे जीवन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आप मेरे साथ रोमियो के पत्री 11 अध्याय को निकाल लें और हम उसके 26 पद को पढ़ेंगे। 26 और 27 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है सारा इसराइल उद्धार पाएगा। तो उसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक इसराइली उद्धार पाएगा। इस अध्याय में वह राष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहा है। प्रत्येक युग में कुछ बचे हुए लोग ही उद्धार पाते हैं। पौलुस पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक से संदर्भ दे रहा है, जिसे हम 59 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। जी हाँ, प्रजा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदेश यह है कि उसे अपने पापों से मन फिराना होगा। कुछ ही लोगों का एक समूह होगा जो परमेश्वर पर ध्यान लगाएगा, वे सब उद्धार पाएंगे। वह इस उद्धार पाने वाले समूह को इसराइल कह रहा है। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का एक समूह ही होता है जो उद्धार पाता है। एलिया के युग में भी ऐसे ही लोगों का एक समूह था, और दाऊद के युग में भी ऐसे ही लोगों का एक समूह था। पौलुस के युग में भी उद्धार पाने वालों का एक समूह था। मित्रों, आज भी ऐसा एक समूह है, और महाक्लेश के समय भी ऐसा एक समूह होगा। तो आइए अब हम आगे पढ़ें रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा हुआ है, वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। दूसरे शब्दों में, सुसमाचार के संदर्भ में वे आपके लिए परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुनाव के आधार पर वे अपने पितरों के कारण परमेश्वर के प्रियजन हैं। मेरे मित्रों, क्योंकि अनुग्रह के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट में पश्चाताप नहीं है, मन फिराव नहीं है। पौलुस पूर्व के विवाद का सारांश प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ दो परस्पर विषम एवं विरोधी विचार हैं, जबकि दोनों सही हैं। पहले तो यह कि अन्य जातियों के लिए इसराइल को बैरी माना गया है, इसलिए कि सुसमाचार अन्य जातियों में पहुंचे। दूसरी ओर अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण वे परमेश्वर के प्रिय हैं। यही कारण है कि मसीह के विश्वासी किसी भी रूप में यहूदी विरोध के सहभागी न हो। मेरे मित्रों, यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कहता रहूंगा, इसराइल की चूक और हमारा चूक किसी भी रूप में परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को बदल नहीं सकते हैं। वरदान का अर्थ यहाँ प्राकृतिक प्रतिभाओं से नहीं है, यह वरदान अनुग्रह से संबंधित है। बुलाहट यहाँ किसी प्रकार का निमंत्रण भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उद्धार से रहित मनुष्यों से मन फिराने को भी नहीं कहता है, इसलिए वह कहता है कि वे अटल हैं। परमेश्वर की बुलाहट में मनुष्य का प्रयास नहीं आता है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में यह मनुष्य के मन फिराव और पश्चाताप से संदर्भित नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उद्धार पाने के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता पड़ती है। आंसू बहाना निश्चय ही यीशु को ग्रहण करने वाले मनुष्य की भावनाओं का प्रदर्शन है, परंतु आंसुओं का आपके उद्धार से कोई भी संबंध नहीं है। आपके उद्धार का कारण मसीह यीशु में आपका विश्वास है, परंतु आपके विश्वास को इसका श्रेय नहीं है। श्रेय जाता है मसीह को। आपका विश्वास आपको सक्षम बनाता है कि आप मसीह को थामे रहें। हम रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी दया हो। मेरे मित्रों, पौलुस वास्तव में अन्य जातियों को पत्र लिख रहा था। रोम नगर की कलीसिया मुख्यतः अन्य विश्वासियों की सहभागिता थी। उस समय अनेक अन्य जाति उधार पा रहे थे। वह इसराइल और अन्य जातियों में विषमता दर्शा रहा है। पूर्व समय में अन्य जाति विश्वास में नहीं थे, परंतु अब अन्य जातियों में से कुछ ने दया हो, परंतु इसी समय इसराइल जो पूर्व काल में विश्वासी था वह अब विश्वास नहीं करता है। पौलुस परमेश्वर के उस सिद्धांत को दर्शाता है जिसके आधार पर वह यहूदी और अन्य जाति दोनों का ही उद्धार करता है, और केवल दया के कारण। परमेश्वर ने जिस प्रकार अन्य जाति को दया दर्शाई, उसी प्रकार वह इसराइल राष्ट्र को भी दया दर्शाएगा। मित्रों, आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 11 अध्याय के 32 पद को, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वह सब पर दया करे। जी हाँ, यहूदी और अन्य जाति दोनों ही विद्रोह और संगीन अविश्वास की दशा में हैं। यही कारण है कि हम अनुग्रह द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं, जो हमारा अपना कर्म नहीं है। यह परमेश्वर का वरदान है, न कि हमारे काम, अन्यथा कोई घमंड करे, जैसा कि लिखा है एफिसियों के पत्र 2:8-9 में। आइए हम आगे बढ़ें और देखें इसराइल राष्ट्र के पुनरुद्धार का कारण। इसराइल राष्ट्र के पुनरुद्धार का क्या कारण है? अस्तु, यह तो परमेश्वर की बुद्धि में निहित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो करता है वही बुद्धिमानी है, और हम इस पर भी आधारित हों वही सही है और सर्वोत्तम है। आप में और मुझ में पुराना स्वभाव है जो परमेश्वर के प्रत्येक निर्णय पर प्रश्न करता है। मैंने अनेक विश्वासियों को कहते हुए सुना है, अन्य जातियों ने सुसमाचार सुना ही नहीं है तो उन्हें उद्धार से वंचित कैसे माने? परमेश्वर को उन्हें दंडित करने का अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को संपूर्ण अधिकार है। वह परमेश्वर है और वह जो भी करता है वह उचित ही होता है। यदि आपके विचार में वह सही नहीं है तो आपका सोचना उचित नहीं है। यदि आप उसे बुद्धि का काम करने वाला न कहें तो आप ही गलत हैं। परमेश्वर मूर्ख नहीं है, और निश्चय ही आप और मैं मूर्खता कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं कर सकता। ओह, हमें इसके बोध की कितनी आवश्यकता है। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 11:33 में लिखा है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। मित्रों, पौलुस अब उस स्थान पर आ गया है कि वह अपनी चर्चा के विषय में व्यक्त बुद्धि और महिमा को समझ पा रहा है। इस पद पर गोडेक की टिप्पणी पर ध्यान देने योग्य एक बात है। एक यात्री की नाई जो ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंच गया है, प्रेरित की पलटवार पीछे देखता है और विचार करता है, उसके पर्वों के नीचे गहराइयां हैं, परंतु ज्योति उन्हें प्रकाशमान करती है और चारों ओर एक विशाल क्षेत्र है जिसे उसकी आंखें निर्देशित करती हैं। यह पद स्तुति पद है, विवाद नहीं है, तथापि यह महानतम विवाद है। यदि हम इसराइल, अन्य जाति और हमारे साथ परमेश्वर के व्यवहार को हम समझ नहीं पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसमें उचित और पर्याप्त कारण नहीं है। कठिनाई वास्तव में यह है कि हम परमेश्वर की बुद्धि और उसके मार्गों को समझ नहीं पाते हैं। 1 कुरिन्थियों की पत्री 2:14 में पौलुस कहता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे मित्रों, एक बार यात्रा में मेरे बेटे को तेज बुखार हो गया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और वह नहीं समझ पा रहा था कि डॉक्टर परीक्षण में उसे कष्ट क्यों दे रहा है। उसने रोते रोते कहा, पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर के इसलिए लाया क्योंकि वह ठीक हो। यथासंभव बुद्धिमानी का काम कर रहा था, क्योंकि मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे लिए वही करता है जो सबसे अच्छा हो। हम हमारे साथ होने वाली घटनाओं को समझ नहीं पाते हैं, परंतु हमें यह मानना है कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही करता है और ऐसा होने देता है। हम तो आबूद बालक की नाई हैं। हम परमेश्वर के मार्गों को समझ नहीं सकते। हमारी परिस्थितियां सदा ही अच्छी न हो, परंतु वे परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान से उभरती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमसे कहता है यशाया नबी की पुस्तक 55:8-9 में, मेरे विचार में और तुम्हारे विचार में एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ओह, हमें इस सत्य के बोध को समझना है, अर्थात यह हमारे लिए आवश्यक है। रोमियो की पत्री 11:34-35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। मेरे प्रियो, ये प्रश्न तो आसान है, परंतु इनका उत्तर आसान नहीं है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? किसी ने भी नहीं, यही सही उत्तर है। पौलुस की हार्दिक इच्छा थी कि उसे जाने, इसलिए उसने कहा, फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय उसके 10 पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ध्यान दीजिए, उसका मंत्री कौन हुआ? परमेश्वर का परामर्शदाता कोई नहीं है। मैं अनेक कलीसियाई समितियों को जानता हूं जो सोचती हैं कि वे परमेश्वर को अच्छी राय दे सकती हैं। उसे आवश्यकता नहीं है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर रहते समय किसी से परामर्श नहीं लिया था। एक बार जब 5,000 पुरुषों के जनसमूह को भोजन खिलाने की बात उठी थी, तब उसने फिलिपुस से पूछा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह प्रश्न क्यों किया था? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, और उसे फिलिपुस के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि उसने फिलिपुस को अपने शिष्यों के परामर्श की आवश्यकता नहीं थी और नहीं समझी थी। उन्होंने यह राय दी थी, उन्हें विदा कर, उसने कहा उन्हें खाने को कुछ दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे अपनी राय नहीं पूछता है, जबकि अनेक जन उसे राय देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसने पहले उसे कुछ दिया है? क्या आपने कभी परमेश्वर को कुछ दिया है कि वह आपका ऋणी होने की विषम स्थिति में हो? यदि आप परमेश्वर को दे पाए हो तो वह आपका ऋणी होगा। आपके पास जो कुछ भी है, क्या वह सब उसी का दिया हुआ नहीं है? मेरे विचार में हमारी दरिद्रता के कारणों में एक कारण यह भी है कि हम उसकी आशीषों में से बहुत कम उसे देते हैं। यदि कोई उसे कुछ देता है तो वह लौटाकर बहुत अधिक उसे देता है। और सच तो यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि वह किसी का ऋणी नहीं है। वर्षों पूर्व किसी ने एक धनवान व्यक्ति से पूछा, वह एक अच्छा विश्वासी था, यह कैसे संभव है कि आप इतना अधिक दान करके भी धनवान है? उसने उत्तर दिया, मैं दोनों हाथों से निकालता हूँ। परमेश्वर दोनों हाथों से भरता है और उसके हाथ मुझसे बड़े हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर को अवसर नहीं देते हैं कि वह अपने हाथों को काम में ले। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वह हमें उससे कहीं अधिक देगा जो हम उसे देंगे। रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसके 36 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। मेरे प्रियो, इससे मुझे ऊंचाइयां प्राप्त होती है। मैं इसका अनुवाद करता हूँ, क्योंकि उसी से, उसी के द्वारा और उसमें सब कुछ है, उसी का महिमान्वन सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। अल्फोर्ट ने इस पद पर या इस पद का शीर्षक दिया है, प्रेरणा के पृष्ठों में भी सर्व उत्कृष्ट संबोधन व्याप्त है। मेरे प्रियो, उसी की ओर से अर्थात परमेश्वर सब बातों का संपूर्ण कारण और स्रोत है। उसी के द्वारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान संभरक और कार्य करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 17 पद में ईश्वर ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। आगे देखते हैं, उसी के लिए अर्थात परमेश्वर प्रत्येक प्राणी को लेखा देने के लिए एकत्र करेगा। सब कुछ परमेश्वर की ओर से प्रवाहित है। आगे है, उसकी महिमा। उसकी महिमा युगानुयुग की है। क्या हम उन बातों के लिए परमेश्वर को महिमा से वंचित कर रहे हैं जिनके लिए हमें श्रेय लेने का अधिकार नहीं है? महिमा केवल उसी का है और वह किसी को अपनी महिमा नहीं देता। मेरे मित्रों, हम कैसे अद्भुत धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और इससे हटने का मन भी नहीं करता है। यह परमेश्वर की महिमा के कारण है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 12 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर के साथ संबंध, आत्मा के वरदानों के साथ संबंध, अन्य विश्वासियों के साथ संबंध और अविश्वासियों के साथ संबंध। मित्रों, यह रोमियो की पुस्तक का अंतिम भाग का आरंभ है। आपको स्मरण होगा कि पहले 8 अध्याय सिद्धांत संबंधित हैं, अगले 3 अध्याय ईश्वरीय व्यवस्था के हैं और यह अंतिम भाग में कर्तव्य विहित है। अब हम उन धर्म विज्ञान के व्यवहारिक विषयों को देखते हैं जिन्हें पौलुस हमारे सामने रखता है। यहाँ सुसमाचार दृढ़ता से आगे बढ़ता है और मैं भी चाहता हूँ कि यह ऐसा ही हो। रोमियो की पत्री के प्रथम भाग में पाठक ने उद्धार का ऐसा टोप देखा और विश्वास की ढाल देखी, परंतु इस अंतिम भाग में पांव शांति के सुसमाचार के लिए जूते जड़ा रहे हैं। हमें युद्ध में खड़ा होना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें दौड़ में प्रतियोगिता में भाग लेना है। अब कोई कहेगा कि हम पवित्रीकरण के भाग में व्यवहारिकता देख चुके हैं, वहां सुसमाचार दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, यह सच है, परंतु इन दो भागों में गहन अंतर है। पवित्रीकरण के भाग में हम मसीही गुणों के विषय में देख रहे थे और इस भाग में हम मसीही आचरण के विषय में देखेंगे। वहां आंतरिक मनुष्य की चर्चा की गई थी, परंतु यहां बाहरी मनुष्य की चर्चा की जा रही है। वहां थी मसीही अवस्था और यहां है मसीही समर्पण एवं अभिषेक। वहां था कि एक मसीही विश्वासी कौन है और यहां है कि एक मसीही विश्वासी क्या करता है। हमने अनुग्रह के सौभाग्य को देखा है और अब हम अनुग्रह के नीति वचन को देखेंगे। जीवन के मार्ग को जीवन के प्रमाणों से पुष्ट होना है। मेरे प्रियो, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने को जीवन के कार्यों द्वारा पूर्ण किया जाना है। इस अंतिम भाग में आगे बढ़ते समय कुछ और भी हमें देखने की आवश्यकता है। विश्वासी का आचरण इस संसार में उसके संबंध में आने वालों के साथ उसके स्वभाव से प्रकट होना है और इस आचरण का निमंत्रण किसी एक विशेष रूप में होना है। आचरण के नियमों का प्रतिपादन करना है तो बहुत आसान है, परंतु पौलुस ऐसा नहीं करता है। उसने हमें मूसा की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है और उसने हमें इसलिए मुक्त नहीं किया है कि हम किसी अन्य विधि या विधान के अधीन हो। अनेक विश्वासी स्वयं को पृथक कहते हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते और अनेक अन्य काम नहीं करते, परंतु मैं चाहता हूं कि वे कुछ तो करें। मैंने तो यही देखा है कि उनकी जीभें बुराई करती हैं। आप उनसे सावधान रहें। उन्हें यह समझ होना है कि परमेश्वर की संतान नियमों के अधीन नहीं है। तथापि पौलुस कुछ महान सिद्धांतों को प्रतिपादन करता है कि विश्वासी की अगुवाई में काम आए। पवित्र आत्मा विश्वासी को रास्ते का नक्शा सुझाता है, उन्हें मोड़ दर्शाता है, बस गति सीमा नहीं दर्शाता है। वह होटल और भोजनालय भी दर्शाता है, परंतु उन्हें किसी एक स्थान पर रुकने का निर्देश नहीं देता। मेरे मित्रों, वहां बाहरी रास्ते स्पष्ट किए गए हैं और उनसे बचने की चेतावनी भी दी गई है। निस्सार नगर का नाम भी दिया गया है और निकाश मार्ग भी स्पष्ट है। विश्वासी को निर्देश है कि वह तुरंत बाहर निकले और किसी भी मार्ग की प्रतीक्षा न करे। वहां अनेक निकाश मार्ग हैं। मेरे प्रियो, अब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 11 के शिखर से नीचे उतर रहे हैं। हम रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 33 से 36 की चोटी से उतरकर स्पष्ट कर्तव्यों के मैदान में आते हैं। यही हम सब निर्वाह करते हैं और हमारा व्यक्तित्व भी इसी में अवस्थित है। आइए हम आगे बढ़े और देखें परमेश्वर के साथ संबंध। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरे शब्दों में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर याचना करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्वों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर के लिए पृथक किए गए हों और उसे मन भावन हो, जो तुम्हारी बौद्धिक और आत्मिक सेवा है। इसलिए इस विचार को पूर्वोक्तियों से जोड़ता है, यद्यपि इसका पूर्वोक्तियों से तात्कालिक संबंध है। मेरे विचार में पौलुस इसलिए के उपयोग द्वारा संपूर्ण पत्री को संयोजित करता है। आगे है, विनती करता हूं। यह अनुग्रह की भाषा है, वैधानिक भाषा नहीं है। यहां सीनै पर्वत की गर्जन नहीं है। मूसा ने आज्ञाएं दी, परंतु पौलुस प्रबोधन करता है। क्या पौलुस आज्ञा देने योग्य था? उसने फिलिमोन से कहा कि वह आज्ञा दे सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा। पौलुस आज्ञा नहीं देता है, वह कहता है मैं विनती करता हूं। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। जी हाँ, यह इब्रानी भाषा की अभिव्यक्ति है, इसलिए यह बहुवचन दया का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है दया की बहुतायत। परमेश्वर दया का धनी है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास बहुत दया है। उसे मेरे लिए बहुत दया काम में लेनी होती है, परंतु आपके लिए आपके पास अभी बहुत अधिक दया है। दया का अर्थ है परमेश्वर का तरस, उसकी अनुकंपा, उसकी उदारता, उसकी अनुकंपा जो अचूक है। आगे देखते हैं, चढ़ाओ अर्थात उसे समर्पित कर दो। यही शब्द यदि आपको स्मरण हो तो आपने इसे अध्याय 6 में पाया था। यद्यपि कुछ टीकाकारों के अनुसार अध्याय 6 में इसका उपयोग मन के संदर्भ में है और यहाँ इच्छा के संदर्भ में है, जबकि मेरे विचार में ऐसा अंतर सही नहीं है। मेरे मित्रों, दोनों स्थानों में यह इच्छा के संदर्भ में है। अध्याय 6 में मसीही चरित्र का अभिप्राय है परमेश्वर के अधीन होना, मसीही समर्पण और आचरण से अभिप्राय है। आगे है, अपने शरीरों को अर्थात अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को। हमारी देह हमारी अभिव्यक्तियों का माध्यम है, मन, अनुराग, इच्छा आदि सब, और पवित्र आत्मा इनका उपयोग करता है, को उसे सौंप दो। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करने हेतु विंसेंट ने पदों का संग्रह किया और हमें अपनी देह में परमेश्वर का महिमान्वयन प्रकट करना है। पहला क्रंथियों की पत्री 6 अध्याय के 20 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 20 पद में लिखा है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में सदैव लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मेरे मित्रों, अपनी इच्छा के द्वारा ही हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। यह हमारी आत्मिक सेवा है जो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है, और वह चाहता है कि हम पूर्ण रीति से उसको अर्पित हो जाएं, उसे समर्पण कर दें और उसके द्वारा उसको आदर दें। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों की बातों को सीखा है, और आप ऐसा करेंगे कि अपने आप को जीवित और भावता हुआ परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप निरंतर उसकी निकटता में बने रहें। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
प्रभु यीशु प्यारे प्यारे,
Thank you.
चुन रखा था मुझको।